یہ پروگرام امریکی عوام کی مدد اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی ایجنسی برائے بین الاقوامی ترقی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے تمام مواد کی ذمہ داری پاکستان ریڈنگ پروجیکٹ کی ہے۔ ضروری نہیں کہ اس پروگرام میں شامل مواد یو ایس ایڈ یا امریکی عوام کے خیالات کی ترجمانی کرتا ہو۔
دیش کے گلستاں میں تازگی ہمیں سے ہے، دیش کے گلستاں میں تازگی ہمیں سے ہے۔
کے ساتھ چلو، وقت کی آواز سنو، وقت کے ساتھ چلو، وقت کی آواز سنو، وقت جو ساز بجاتا ہے وہی ساز سنو۔
بھائی، آج تو چاچا جگمگ شاعری ہی میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہیں اور میں تو بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی۔
ارے ارے چاچا جگمگ اور ببلی، تمام باتوں سے پہلے ہم اپنے سننے والوں کو دل سے پیار بھرا سلام تو پہنچا دیں۔ نور آپی، ببلی اور چاچا جگمگ کی جانب سے پروگرام روشنی ہمی سے ہے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویسے سچی بات ہے چاچا جگمگ، ہم سمجھے نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔
میں آپ لوگوں کو وقت کی قدر کرنا سکھا رہا ہوں۔ دیکھیں نا، آپ لوگ اتنی دیر سے اسٹوڈیو میں آئے ہو، جبکہ مجھے دیکھو، میں 45 منٹ سے یہاں بیٹھا ہوں۔
اچھا تو یہ بات ہے،
لیکن ہم تو ٹھیک وقت پر پہنچے ہیں، ہم لوگ لیٹ تو نہیں تھے اپنے وقت سے۔
وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ذمہ دار لوگ وقت سے پہلے ہی کام کی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں،
اور وہ بھی 45 منٹ پہلے۔
جی ہاں،
لیکن یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔
یعنی کیا؟
یہی کہ آپ 45 منٹ پہلے ہی پہنچ گئے۔
بھائی وہ کیسے؟
دیکھیں چاچا جگمگ، آپ نے یہاں بیٹھ کر خواہ مخواہ اپنے 45 قیمتی منٹ ضائع کر دیے۔ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ اسی وقت میں کوئی اور کام کر لیتے؟
میں وہ دراصل
چاچا جگمگ، میں نے مانا کہ ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم وقت سے بہت پہلے پہنچ جائیں۔ اس طرح سے بھی ہم اپنا وقت ہی ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں ایک مخصوص وقت لے کر گھر سے نکلنا چاہیے، تاکہ رستے میں ٹریفک جام یا کسی اور وجہ سے ہم لیٹ نہ ہو جائیں اور وقت پر پہنچ سکیں۔
تو ثابت یہ ہوا کہ ہمیں دوسروں کو اچھی باتیں سکھانے سے پہلے خود ان کو سیکھ لینی چاہیے۔
بس ہو گئی نا بات، اب ہم کسی اور موضوع پر بھی بات کر سکتے ہیں۔
ارے ہاں ہاں کیوں نہیں۔ ببلی، آپ آج کے پروگرام کی کچھ تفصیل بتا دیں سامعین کو۔
جی، ہمارے مستقل سلسلے آج بھی پروگرام کا حصہ ہوں گے، جس میں خزانہ، بولتی کتاب، نظم اور ریڈیو رپورٹ بھی شامل ہے۔
اور ہاں، آج ہمارے پروگرام کی اسپیشل تھیم ہے ٹائم مینجمنٹ۔
نورا پی، ٹائم مینجمنٹ کسے کہتے ہیں؟
بھائی اس کا مطلب ہوتا ہے وقت کی پابندی،
لیکن میرا خیال ذرا مختلف ہے اس حوالے سے۔ وقت کی پابندی میں ہم خود کو کچھ پابند محسوس کرتے ہیں، اور ٹائم مینجمنٹ میں ہم وقت کے استعمال کی کچھ اس طرح سے منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ ہم کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں، اور اس طرح سے کہ ہم اپنے کام کو مؤثر انداز میں مکمل کر کے بہترین نتائج حاصل کر سکیں۔
واہ، یہ تو ایک دم نئی اور دلچسپ بات ہے میرے لیے۔
بھائی کیا آپ اس بات کو مثال دے کر آسان انداز میں سمجھا سکتی ہیں؟
بالکل، اگر ہم آپ ہی کی مثال کو سامنے رکھیں تو آپ کو اسٹوڈیو میں ایک مخصوص وقت میں حاضر ہونا پڑتا ہے۔ آپ 45 منٹ پہلے آ گئے، لیکن آپ نے وقت کی پابندی کی، یعنی آپ وقت سے پہلے ہی یہاں موجود تھے۔ یہاں آپ نے وقت کی پابندی تو کر لی، لیکن آپ نے ٹائم مینجمنٹ کی خلاف ورزی کی۔
ٹائم مینجمنٹ کے مطابق چاچا جگمگ کو اپنے 45 منٹ کا بھی حساب رکھنا تھا، تاکہ وہ اس وقت میں کوئی دوسرا کام کر لیتے، وہ چاہے آرام ہی کیوں نہ کر لیتے، اس طرح سے ان کے وہ 45 منٹ بھی ضائع نہ ہوتے۔
بالکل ٹھیک، आप एकदम सही समझी हो टाइम मैनेजमेंट को।
तो आज मौसीकी में क्या है सुनने को?
वक्त ही के उन्मान से एक नज्म भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा है, तो क्यों ना सुनी जाए आज की नज्म।
पहनूर ने काम में देर कैसी।
वक्त की बात सुनो, वक्त के साथ चलो, वक्त की बात सुनो, वक्त के साथ चलो।
वाह भाई वाह, आज तो दिल से दाद दे रहा हूँ मैं।
यानी आप अक्सर दिल से दाद नहीं दे रहे होते?
नहीं बबली, ऐसा भी नहीं है, लेकिन मुझे ये नज्म बहुत पसंद आई। इसमें जो पैगाम है वो हम सब के लिए है, बड़ों बच्चों सब के लिए।
अरे बहुत शुक्रिया आपकी तारीफ का चाचा जगमग। अच्छा बच्चों, आपको मालूम है ना, हमारे सेगमेंट खजाना में हम हर बार उर्दू या अंग्रेजी के हरूफ तहजी के किसी हर्फ से मिलते हैं। इस तरह हम उस हर्फ के बारे में जान पाते हैं। तो इस बार भी हम मिल रहे हैं पेय के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको पेय की बातें बहुत अच्छी लगेंगी। तो आइए सुनते हैं खजाना।
एक दो तीन है नुक्ते, मेरी शक्ल है थाली सी, मुझको सारे पे कहते हैं भोली भाली सी। एक दो तीन है नुक्ते, मेरी शक्ल है थाली सी, मुझको सारे पे कहते हैं भोली भाली सी। बहुत से लफ्ज बनाती हूँ मैं, बहुत सी बातें थी,
छोटे बच्चों की बातें हैं प्याली प्याली सी।
एक दो तीन है नुक्ते, मेरी शक्ल है थाली सी, मुझको सारे पे कहते हैं भोली भाली सी।
लफ्ज है, मुझे तो आज पता चला।
बबली, लफ्ज तो सभी बड़े काम के होते हैं। अगर लफ्ज ना हो तो हम बात कैसे करेंगे?
जी, और लफ्जों से ही तो फिक्रें बनते हैं, और फिक्रों से पूरी कहानी बन जाती है।
हाँ, आज तो कहानी भी सुननी है ना?
यकीनन कहानी सुनवाई जाएगी, और ये कहानी है एक चिड़िया और चींटी की। कहानी बड़ी सबक आमोज है, जिससे हमें ये सबक मिलता है कि वक्त जाया करने वाले हमेशा पछताते हैं, और वक्त की कदर करने वाले हमेशा कामयाब रहते हैं।
नूरापी, तो कहानी सुनवाए ना।
अरे जनाब, लीजिए, हाजिर है आज की कहानी।
बच्चों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है एक चिड़िया और एक चींटी की। ये दोनों पड़ोसी थीं और करीबन रोजाना ही इनकी मुलाकात हो जाती थी। चिड़िया का नाम नैना था। वो एक पहाड़ी चट्टान के साथ उगे हुए चुनार के पेड़ पर बने अपने खूबसूरत घोंसले में रहती थी। उसी चट्टान की एक महफूज दरार में चुन्नी नाम की चींटी अपने पूरे कबीले के साथ आबाद थी। रोजाना सुबह सुबह घर से निकलते वक्त दोनों की मुलाकात हो जाती थी। और यही मुलाकातें आगे चलकर उनकी दोस्ती में तब्दील हो गईं। फारिग वक्त में दोनों गपशप कर लेती, नैना चुन्नी को जंगल के दूर दराज इलाकों की कहानियां सुनाती और मुख्तलिफ जंगली जानवरों के बारे में बताती, जबकि चुन्नी अपनी दोस्त चिड़िया को अपने कबीले के रस्म और रिवाज के बारे में बताती और अपनी मुहिम जुई के किस्से भी मजे ले लेकर सुनाया करती। ये गर्मियों की एक शाम थी जब चुन्नी दूसरी चींटियों के साथ मिलकर खुराक का एक बड़ा टुकड़ा अपने घर मुंतकिल करके निकली तो उसकी मुलाकात नैना से हो गई। नैना ने चुन्नी से हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि तुम दिन भर काम करती रहती हो, तुम्हारी जिंदगी कितनी रूखी और फीकी है, कोई एडवेंचर नहीं, कोई एंजॉयमेंट नहीं, कुछ भी तो नहीं तुम्हारी जिंदगी में। मुझे देखो, सुबह से शाम तक उड़ती फिरती हूँ, तरह तरह का खाना खाती हूँ, तरह तरह के मनाजर से लुत्फ लेती हूँ। तुम भी अपना लाइफस्टाइल बदलो और जिंदगी को एंजॉय करो। चुन्नी ने नैना को मुस्कुराकर देखा और साथ वाली चट्टान के साथ टेक लगाकर बैठ गई। देखो दोस्त, ये मत भूलो कि मैं एक चींटी हूँ, मुझे मेरे बड़ों ने यही सिखाया है कि किसी भी हाल में वक्त जाया नहीं करना। सो मैं अपने वक्त को दिन भर के कामों में इस तरह बांट लेती हूँ कि मैं गल्ला जमा करने और खाने पीने के साथ साथ अपने खानदान के कामों में भी हाथ बटाती हूँ, खेलती भी हूँ और घूमती भी हूँ। सो मैं अपने लाइफस्टाइल से मुतमइन हूँ, और वैसे भी सर्दियों के मौसम में तो मेरे पास वक्त ही वक्त होता है, लेकिन आजकल के मौसम में तो मुझे गल्ला इकट्ठा करना होता है जो सर्दियों के जानलेवा मौसम में हमारे काम आता है। और हाँ, मुझे याद आया, तुम दिन भर घूमने फिरने के अलावा कुछ भी तो नहीं करती। क्या तुम्हें अंदाजा है कि सर्दियों के मौसम में जब बर्फबारी शुरू हो जाएगी तो तुम्हारा क्या बनेगा? आज तुम जो वक्त जाया कर रही हो, तुम्हें सर्दियों के मौसम में बुरी तरह पछताना पड़ेगा। ओहो हो हो हो, हमारी चुन्नी तो बड़ी सियानी होती जा रही है। और हाँ, एक बात बता दूं, ज्यादा बड़ी भी बनने की जरूरत नहीं है। तुम क्या चाहती हो कि मैं भी तुम्हारी तरह दिन भर गल्ला जमा करती रहूं? छी छी छी, कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। चुन्नी को नैना की बातों से बड़ी तकलीफ पहुंची, फिर भी उसने नैना से कहा, देखो जो वक्त की कदर नहीं करते, वक्त भी उनकी कदर नहीं करता। नैना को चुन्नी की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आईं। फिर उसके बाद नैना अक्सर चुन्नी को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाती, उनकी दोस्ती में दरार आती गई। चुन्नी अपने काम में मगन रही और नैना अपनी तफरी में, और इसी तरह वक्त गुजरता गया। बिला आखिर सर्दियों का मौसम शुरू हो गया और फिर बर्फबारी का ना थमने वाला सिलसिला भी आन पहुंचा। बर्फबारी शुरू होते ही चुन्नी के मामा पापा ने उसका बाहर जाना बंद कर दिया। चींटियों का पूरा कबीला अब अपने वसी घर में ही रहता था और गर्मियों में स्टॉक किया हुआ खाना, गपशप, खेलकूद और लंबा आराम, बस यही मामूल था उनका। चुन्नी को घर के माहौल में ये सब अच्छा लगता था, मगर कभी कभी उसे अपनी दोस्त नैना का ख्याल आ जाता था। जाने किस हाल में होगी, उसका घोंसला भी तो गैर महफूज सा था। मगर अब चूंकि चुन्नी को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, सो वो बस सोच कर ही रह जाती। फिर एक दिन जब वो घर के अंदर ही जॉगिंग कर रही थी तो उसे दरवाजे के बाहर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। उससे रहा न गया और उसने दरवाजा खोल दिया। बाहर का मंजर बहुत तकलीफ दे था। उसकी दोस्त चिड़िया, उसकी प्यारी नैना सामने जमीन पर पड़ी थी और इसका जिस्म बुरी तरह से अकड़ चुका था। चुन्नी ने नजरें उठाकर ऊपर दरख्त की तरफ देखा तो उसका दिल दहल कर रह गया। नैना का घोंसला भी अपनी जगह मौजूद नहीं था, यानी वो भी बर्फबारी की नजर हो चुका था। नैना मुकम्मल बेहोशी के आलम में थी। चुन्नी भागी भागी अपने पापा के पास गई और उन्हें सब कह दिया। पहले तो पापा नहीं माने, मगर बाद में वो कबीले की बाकी चींटियों को भी साथ लेकर बाहर निकले और बड़ी मुश्किल से नैना को उठाकर चट्टान की बड़ी दराड़ तक पहुंचाया। तब सब चींटियों ने नैना के साथ लिपट कर अपने जिस्म की गर्मी पहुंचाई तो नैना को होश आया। जब उसे मालूम हुआ कि उसको नई जिंदगी चुन्नी की वजह से मिली और कैसे उसने उसे बेहोश पाकर बाकी चींटियों के साथ मिलकर उसकी जान बचाई तो वो बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि वाकई तुम ठीक कह रही थी। अगर मैं अपना वक्त जाया ना करती और सर्दियों के मौसम की कुछ तैयारी कर लेती तो आज मुझे ये हालात ना देखना पड़ते। चुन्नी ने उसे मजीद शर्मिंदा नहीं होने दिया और बोली कि अब भी देर नहीं हुई। अब भी अगर तुम्हें वक्त की कदर का एहसास हो गया है तो ये बड़ी बात है। चुन्नी के कबीले के सरदार ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे ही तो नहीं कहते कि जो वक्त की कदर नहीं करते वक्त उनकी कदर नहीं करता।
वाह 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 वाह, बहुत खूब।
यानी चाचा जगमग, आपको कहानी पसंद आई?
क्यों ना पसंद आती भला, इतनी अच्छी कहानी जो थी।
नूर, मुझे यकीन है कि ये कहानी सभी सुनने वालों को पसंद आई होगी।
इस पैगाम के साथ कि हमें भी चुन्नी की तरह वक्त की कदर करनी चाहिए। अब हम चलते हैं बोलती किताब से मिलने और सुनते हैं कि आज हमें वो किस किताब से मुतारिफ करवाएंगी।
वालेकुम, कैसी हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
आप कुछ लिख रही हैं?
हाँ, मैं अपना होमवर्क कर रही थी।
बहुत अच्छी बात, लेकिन क्या आपको पता है कि जिस कागज पर हम लिखते हैं ये बनता कैसे है?
नहीं, मुझे नहीं मालूम, आप बताएंगी मुझे?
बस फिर यूँ समझ लें कि मैं सही वक्त पर आई हूँ, लेकिन आज मैं जिस रूप में आई हूँ वो आपको इस हवाले से काफी मदद देगा।
आप पहले अपना आज का तारुफ तो करवा दें।
जी हाँ, क्यों नहीं। आज मैं जिस किताब के रूप में आई हूँ उसका नाम है कागज कैसे बनता है और यही मेरा आज का टाइटल है।
वाओ, फिर तो आप ये भी बताएंगी ना कि सबसे पहले कागज कैसे और किसने बनाया था। मैं तो अक्सर सोचती रहती हूँ कि आज हम जिस कागज पर लिखते हैं वो सबसे पहले किसी ने कैसे बनाया होगा, जबकि मुझे तो आज भी नहीं पता कि कागज कैसे बनता है।
हाँ, ये तो है।
तो बताए ना कि आपने और किस किस मौजू पर लिखा गया है, यानी आपको पढ़कर मैं क्या क्या सीख सकती हूँ।
मुझ में जिन जिन मौजूआत पर मालूमात फराहम की गई हैं, वो ये हैं: दौरे हाजिर के अजायबात, कागज किसने बनाया, कागज किस चीज से बनता है, लकड़ी का गूदा बनाने का तरीका, लकड़ी के गूदे को किस अमल से गुजारा जाता है, लकड़ी के गूदे से कागज बनाने के मुख्तलिफ मराहिल, इस्तेमाल शुदा कागज से दोबारा कागज बनाना, कागज बनाने के लिए जंगलात की तबाही, कागज बनाने वाले कारखाने आलूदगी फैलाते हैं, कागज से पैदा होने वाले मसाइल का हल।
अपने बारे में कुछ और भी बताएं ना।
मुझे आइजक आइसिमोफ ने अंग्रेजी में लिखा था, बाद में मुझे पाकिस्तान में तर्जुमा करके छापा गया। मेरा पहला एडिशन 1997 में छपा था, जबकि मेरा दूसरा एडिशन सन 2000 में छपा था। मैं हर बड़ी दुकान जहाँ बच्चों की किताबें दस्तयाब हों मिल जाती हूँ।
और
बस, और कुछ भी नहीं बताऊंगी। मजीद सब कुछ आप तब जान पाएंगी जब आप मुझे पढ़ेंगी।
तो क्या आप अभी जा रही हैं?
बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं जा रही हूँ, लेकिन अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई किताब की शक्ल में।
जी बच्चों, तो कैसी लगी आज की बोलती किताब?
उम्मीद है कि मेरी तरह सभी बच्चों को बोलती किताब की बातें और मालूमात अच्छी लगी होंगी।
मगर नूर, असल बात तो इस किताब को पढ़ना है, इसका तारुफ बोलती किताब करवाती है।
जी बिल्कुल ठीक कहा चाचा जगमग आपने।
नूरापी, क्या आपने हमें आज रेडियो रिपोर्ट नहीं सुनवानी?
अरे क्यों नहीं बबली, तो आइए चलते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ, और ये है रेडियो रिपोर्ट।
दुनिया में वही कौमें कामयाबी से हमकनार होती हैं जो वक्त की अहमियत को समझती और उसकी कदर करती हैं। कामयाब और खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए वक्त का मुनासिब इस्तेमाल बहुत जरूरी है। ऐसी ही एक मिसाल है हमीदा बेगम की, जो मुलाजमत करने के साथ साथ बच्चों के हकूक भी आसान तरीके से पूरे कर रही हैं। हमीदा का कहना है कि उससे पहले घर और बच्चे दोनों को संभालना बहुत मुश्किल काम था, मगर जब से मैंने टाइम को मैनेज किया है, मैं मामूल के कामकाज के अलावा बच्चों पर मुकम्मल ध्यान देती हूँ।
मेरे 4 बच्चे हैं, मुलाजमत के साथ घर और बच्चे संभालना बहुत मुश्किल काम है, मगर ये सब टाइम मैनेजमेंट के बगैर मुमकिन नहीं। मेरी कोशिश होती है कि वक्त को इस तरह इस्तेमाल करूं कि मुलाजमत और घर दोनों में से किसी के साथ ज्यादती ना हो सके।
आमतौर पर ये देखा गया है कि मुलाजमत करने वाली खवातीन बमुश्किल ही अपनी फैमिली के साथ इंसाफ कर पाती हैं, मगर हमीदा ने यह साबित कर दिया है कि वक्त की पाबंदी करके इन सब जिम्मेदारियों के साथ शादी के बाद तालीम को भी जारी रखा जा सकता है।
शादी के बाद भी मैंने पढ़ाई के शौक को जारी रखते हुए बीए पास किया और अब मास्टर के पेपर दे रही हूँ। मामूल के कामकाज में से वक्त निकाल कर मैं अपने बच्चों को खुद ट्यूशन पढ़ाती हूँ, और छुट्टी के रोज मेरी कोशिश होती है कि बच्चों के साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाए ताकि इनके बेहतर नशोनुमा हो सके।
हमीदा के 4 बच्चे हैं, जिनमें ऐमन और हुरिया का कहना है कि उनकी वालदा उन्हें पूरा वक्त देती हैं, मजेदार खाने खिलाती और आउटिंग के लिए भी लेके जाती हैं, और उन्हें वक्त की अहमियत के बारे में आगाह करती हैं।
मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं, हमें हर चीज़ वक्त पर तैयार मिलती है, और मम्मा हमें स्कूल का सबक भी पढ़ाती हैं और मज़े मज़े खाने भी खिलाती हैं और आउटिंग के लिए भी लेकर जाती हैं।
मेरी मम्मा दुनिया की बेस्ट मम्मा है।
वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, हमें खुद ही उसके साथ अपने मामूलात को सेट करना पड़ता है। वक्त की पाबंदी ना करने वाले लोग हमेशा नाकाम और अकेले रह जाते हैं। प्रोग्राम रोशनी हमी से है, साइमा यूसुफ, पिशावर।
आखिर में तमाम सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी आरा और तजावीज के लिए हमें जरूर लिखें, ताकि हम अपने प्रोग्राम को मजीद बेहतर बना सकें।
और हमारा ईमेल एड्रेस है रोशनी roshni@parkreading.org।
और तमाम बच्चे हमें मैसेज कर सकते हैं 8333 पर, और बच्चों आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं 8333 पर, यानी 8333 पर।
अब नूर, बबली और चाचा जगमग को दीजिए इजाजत।
लेट्स रीड।
یہ پروگرام امریکی عوام کی مدد اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی ایجنسی برائے بین الاقوامی ترقی کے تعاون سے پیش کیا گیا۔ اس پروگرام کے تمام مواد کی ذمہ داری پاکستان ریڈنگ پروجیکٹ کی ہے۔ ضروری نہیں کہ اس پروگرام میں شامل مواد یو ایس ایڈ یا امریکی عوام کے خیالات کی ترجمانی کرتا ہو۔